दंडोत बंदन अनकवार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड़ा सतगुर नानक जिन कल राखे मेरी। बेसुमार अथाह अगनत अतोले ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में उपस्थित गुरु की साजी निवाजी साध संगत जी, गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की कृपा से हम लोग पावन पवित्र सुखमणि की कथा सुन रहे हैं। सुखमणि की कथा को जो व्यक्ति सुनता है वह लोक परलोक दोनों को संवार लेता है। सबसे उत्तम हर की कथा। अभी अभी आदरणीय वृद्धि जी के मुखारविंद से राम नाम की महिमा सुन रहे थे। ये सत्य है कि पुरातन काल में भी राम नाम की बड़ी महिमा रही है। भगवान शंकर ने राम नाम को तारक मंत्र कहे हैं और स्वयं भगवान शंकर राम का नाम जाप करते हैं। नारद जी ने जब वाल्मीकि के पास गए ज्ञान देने के लिए तो वाल्मीकि को राम का ही मंत्र दिए। हालांकि उसने उल्टा नाम जपा मरा मरा, लेकिन फिर भी उसने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया और भगवान राम के इस धरती पर अवतरित होने से पहले ही रामायण लिख दी। वही राम नाम जब कबीर जी गुरु धारण करने के लिए स्वामी रामानंद जी के पास गए तो गंगा जी स्नान करके आ रहे थे स्वामी रामानंद जी। अभी अमृत वेले ही था, करीब करीब 3 बजे रात था। जिस रास्ते से आ रहे थे उस रास्ते में लेट गए। ऐसा कहते हैं कि रामानंद जी का पांव कबीर जी के छाती पर पड़ा और वहां पर रामानंद जी कहते हैं, कौन है बच्चा जिसके ऊपर मेरा पांव पड़ा है, उठ और राम का नाम ले। और कबीर जी ने उनको गुरु बना करके राम का नाम जाप किए और महा ब्रह्म ज्ञानी बन गए। वही राम का नाम, नाम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रह्लाद जपियो हर जैसे। नारद जी ने ध्रुव भगत को राम नाम का मंत्र दिया और ध्रुव ने राम का नाम जप करके परम गति को प्राप्त किया। इसी तरह से प्रह्लाद ने भी राम नाम का स्मरण किया। पंचम पातशाह साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज श्लोक सहस कृति में राम नाम की महिमा बता रहे हैं कि मंत्रंग राम राम नाम। राम का जो नाम है वो मंत्र है। मंत्रंग राम राम नामंग ध्यानंग सर्वत्र पूर्ण है। जो वाहे गुरु जो राम जो कण कण में संपूर्ण है, व्यापक है, घट घट के अंतर की जानत है, उसका ध्यान करो। और जाप करना है तो राम मंत्र का जाप, मंत्रंग राम राम नाम ध्यानंग सर्वत्र पूर्ण। ये सच्चाई है कि कलयुग में भगवान का नाम ही एक ओट आसरा है। जो व्यक्ति राम नाम या वाहेगुरु मंत्र दोनों एक ही है, इसमें रंचक भेद नहीं। यहां तक कि सिख संप्रदाय में वाहेगुरु को गुरु मंत्र और महामंत्र कहा गया है। वाहेगुरु के अंदर चार अक्षर है, वबा हहा गगा और र। वा से वासुदेव, ह से हरि, ग से गोविंद और र से राम। जिसने एक बार वाहेगुरु नाम लिया, समझ जाओ उसने परमात्मा को चार बार नाम लिया। इसलिए वाहेगुरु मंत्र जो है सारे मंत्रों से उत्तम है, महान है, और सिखों के लिए तो प्राण है। ऐसा समझो कि प्राण निकल जाने पर एक क्षण रह नहीं सकता। इसी प्रकार से जो व्यक्ति वाहेगुरु मंत्र को विसार देता है वो समझो मरा हुआ है। पंचम पातशाह आगे बता रहे हैं कि मरणंग विसरणंग गोविंद है, जिसने गोविंद के नाम को विसार दिया, भुला दिया, समझो मरा हुआ है। जीवनंग हर नाम ध्यान है, जिस जो हरि का ध्यान करता है, हरि का सुमरण करता है, वास्तविक में वही जिंदा है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सुखमनी के माध्यम से उपदेश कर रहे हैं, जाकै मन गुर की प्रतीति, तिस जन आवे हर प्रवचीति। प्रतीति नाम है, जाकै मन गुर की प्रतीत, सॉरी पढ़ने में थोड़ी गलती हो गई, जाकै मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवे हर प्रवचीत। एक्चुअली यहाँ क्या है कि हिंदी में सिहारी को पढ़ते हैं, समझे ना, और गुरुमुखी में सिहारी को पढ़ते नहीं है, इतना ही अंतर है। जाकै मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवे हर प्रवचीत। हिंदी में है प्रतीत, प्रतीति से प्रतीत बना है। प्रतीत का भाव यह है जिस व्यक्ति को गुरु के वचन पर पूर्ण विश्वास है, संदेह रहित ज्ञान है, जो व्यक्ति गुरु के वचन को मंत्र मानता है। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु के वाक्य को जो मंत्र समझता है, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, और गुरु की कृपा से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जाकै मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवे हर प्रवचीत। जिसके मन में गुरु के वचनों के ऊपर विश्वास है, भरोसा है, उस व्यक्ति को परमात्मा चित्त में आता है, चेते आता है, ख्याल में आता है, उसे सुमरण करने का भाव बनता है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, जाकै मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवे हर प्रवचीत। जो गुरु के ऊपर भरोसा करता है तो गुरु उसको परमात्मा से मिलाते हैं। आज तक जिसने भी परमात्मा को पाया है, परम आनंद को पाया है, वह गुरु की कृपा से ही पाया है। गुरु के बगैर परमात्मा की प्राप्ति करना असंभव है। गुरु जो है मीडिएटर है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, जाकै मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवे हर प्रवचीत। हुकम मणिये होए परवान, तक खसमे का महल पाए सी। जो गुरु के वाक्य को गुरु के शब्द को हुक्म की तरह मानता है। उस संशय रहित जो पालना करता है वह व्यक्ति के मन में परमात्मा प्रभु हमेशा चेते रहता है, वो भुलाता ही नहीं व्यक्ति। भगत भगत सुनिए तेहु लोए, जाकर हृदय एको होए। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, भगत भगत सुनिए तेहु लोए, जाकर हृदय एको होए। भगत भगत सुनिए तेहु लोए। जो लोग भक्ति करता है, प्रभु का सुमरण करता है मन से और वाणी से, उसको जगत में लोग जो है उसको जगत में जस होता है। जाकर हृदय एको होए, और जिसका हृदय जो है एक प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा जो चित्त है बहुत चित्तवान है, हमारा मन कितनों से जुड़ा हुआ है। जब ये मन बहुतों से जुड़ा होता है, बहुतों पर भरोसा होता है, तो वाहिगुरु की पूरी कृपा नहीं हो पाती। सबका आशा छोड़ करके एक वाहिगुरु के ऊपर जब आशा होता है तो हमें अनंत रास्तों से हमारे ऊपर कृपा होती है। द्रौपदी पहले आशा करती है पांडवों के ऊपर, भीष्म पितामह के ऊपर, कृपाचार्य के ऊपर, और वहाँ पर जितने और महारथी थे उसके ऊपर भरोसा करती है, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। अंत में एक बार नारायण वाहेगुरु परमात्मा का आशा करती है और वह अपनी इज्जत अपने पद को बचा लेती है। इसी तरह से साध संगत जी, जो व्यक्ति ये चाहता है कि ये अमोलक जीवन को सफल कर लें, तो एक प्रभु की आशा रखना है। इस जगत में जब हम किसी की आशा रखते हैं तो वह हमें स्वार्थ के लिए प्रेम करता है। स्वार्थ लाख करें सब प्रीति, सुर नर मुनजन की यह रीति। देवता मुनि जगत के लोग बिना स्वार्थ का कोई किसी को पूछता ही नहीं, चाहे भी पूछता है तो कुछ ना कुछ मतलब होता है। भक्ति करे पताल में, प्रगट होए आकाश, रज्जब तीनों लोक में छपे न हर का दास। यदि कोई व्यक्ति एक गुफा में जा करके, जहाँ कोई जाता नहीं है, जंगल के किसी गुफा में जा करके हरि हरि वाहेगुरु वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम वाहे श्री वाहेगुरु का जो व्यक्ति एक चित्त होकर के नारायण का सुमरण करता है, तो वह तीनों लोकों में प्रकट हो जाता है। जिस तरह से बुराई नहीं छिपता, इसी तरह से सत्य भी नहीं छिपता। सत्य तो ऐसे उभर के आता है, क्योंकि सत्यम परम धीमहि ही, सत्य जो है वो परम है, सुप्रीम बीइंग है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज नाम की महिमा को बताते हुए आगे भाई गुरदास जी कहते हैं, भगत भगत जग वजिया, चहो चक्का दे विच चमरेटा, पाणा गंढे राह विच, कुल्ला धर्म ढोए ढोर समेटा, ज्योकर मैले बड़े चिथड़े, हीरा लाल अमोल पलेटा, चह वरना उपदेशदा, ज्ञान ध्यान कर भगत सहेटा, नावण आया संग मिल, बानारस कर गंगा बेटा, गंगा थेटा, कढ़ कसीरा सौंपया, रविदास है गंगादी भेटा, लगा पुरव अभीचदा, डिठा चलित अचरज अमेटा, लया कसीरा हथ कढ़, सूत इक ज्यो ताणा पेटा, भगत जना हर माँ प्यो बेटा। भगत भगत जग वजिया, चौ चक्का दे विच चमरेटा। व्यक्ति अपना कमरा बंद करके भक्ति करे, बहुत कम लोगों से मिले, उतना ही व्यवहार करे जितना से के व्यवहार चल जाए। क्योंकि जो तुम्हारी ऊर्जा है वो बहुत कीमती है, बहुत ज़्यादा कीमती है। वास्तविक जो कमाई है, वास्तविक जो धन है, वो परमात्मा का ध्यान और परमात्मा का नाम है। मुंह से परमात्मा के नाम को उच्चारण करना है और मन से प्रभु का ध्यान करना है। यहाँ पर साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, भगत भगत सुनिए तेह लोए, जाके हृदय एको होए। जिसके हृदय में एक नारायण, एक वाहिगुरु टिका हुआ है और कोई नहीं जिसके हृदय में है, उसको जगत में लोग भगत भगत कहते हैं, भगत कहलाता है। नीच जात हर जपतया उत्तम पदवी पाए। देखो कबीर जुलाहा होकर के प्रभु को पाया, रविदास जी चमार होकर के भी प्रभु को पाए। हमें आप में क्या कमी है? हमारे आप में यदि कुछ कमी है तो सिर्फ इतना ही है कि पूर्ण भरोसा नहीं है, पूर्ण लगन नहीं है, सिर्फ इतनी कमी है। वरना इस संसार के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इतनी पॉसिबिलिटी है कि वो भजन सुमरन करके परमात्मा हो सकता है। यू कैन बिकम गॉड थ्रू चैंटिंग द मंत्रा ओम, द चैंटिंग मंत्रा ऑफ वाहिगुरु। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, सच करनी सच ताकी रहत, सच हृदय सत मुख कहत। आगे कह रहे हैं सच करनी, जो व्यक्ति सच के मार्ग पर चलता है, सच्चे मार्ग चल दिया उस्तत करे जहान, जिसका कर्म सच्चा है। सच करनी सच ताकी रहत, और जिसका जीवन पवित्र है, हाथ से सच करता है जो भी, और जिसका जीवन जो है रहत जो है वो गुरुमुख वाली है, गुरसिख वाली है, सच के मार्ग पर चलने वाला है, सच हृदय, और जिसका हृदय भी सच्चा है। क्योंकि सुच होवे ता सच पाइए। सच हृदय सत मुख कहत, जिसका हृदय सच्चा है और मुंह से जो भी बोलता है वो सत बोलता है। सच करनी सच ताकी रहत, सच हृदय सत मुख कहत। क्योंकि जिसका मन में कुछ और है, मुख में कुछ और है, वह व्यक्ति वाहिगुरु को नहीं प्राप्त कर सकता। जिन मन होर मुख होर से कांढे कचिया, मन में कुछ और है, मुख में कुछ और है। और एक जो आज कीमती बात बताने जा रहा हूं कि व्यक्ति का ध्यान दूसरे के ऊपर होता है कि दूसरा क्या करता है। जो व्यक्ति अपना कीमती समय दूसरे को देखते रहता है, दूसरे को तो संवार नहीं सकता, अपना जो कीमती समय है संवरने का वो भी खो बैठता है। इसलिए सात संगत जी, दूसरों को संवारने के लिए परमात्मा ने ठेका लिए हैं, परमात्मा ने तुमको अपने संवरने के लिए दिया है। बहुत से लोगों की निगाहें देख रहती है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, झांक झांक के देखते हैं, ये बड़ी मूर्खता है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, सच करनी सच ताकी रहत, जिसका जीवन सच पर चलता है। हरिश्चंद्र को देखो, राजा हरिश्चंद्र ने सच पर चलने के लिए अपना राजपाट सब कुछ गंवा दिया और बहुत कठिनाई को सहा उसने। यहां तक कि सच के मार्ग पर चलने को अपने लड़के को बेच दिया, अपनी पत्नी को बेच दिया, स्वयं बिक गया, अत्यंत कठिनाई को। लेकिन इसीलिए हरिश्चंद्र के बारे में कहते हैं, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार। चंद्रमा शीतलता देना बंद कर सकता है, सूर्य प्रकाश देना बंद कर सकता है, लेकिन हरिश्चंद्र झूठ नहीं बोल सकता। इससे बड़ा उपमा उसे उसको कहा, चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, जगत का सारा नेचर बदल सकता है। हालांकि यह असंभव है, लेकिन जो हरिश्चंद्र का सत्य विचार है ये कभी नहीं बदला। यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर के उसके आगे झुक गए कि तुम महान, तुम महान। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इसलिए हम अपना कोशिश करें जीवन में कि जितना ज्यादा हो सके उतना सच के मार्ग पर चलें, और कम से कम जो है झूठ बोलें, मिनिमाइज करें, धीरे 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 अपने को संकोच करके। और ये जरूरी बात है कि जो आदमी जितना ज्यादा बोलेगा उसे झूठ बोला ही जाएगा, इसलिए बहुत कम बोलना है और नाप तौल कर बोलना है। दो बातों से काम चल जाए, चार बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए गुरु महाराज कह रहे हैं, सच करनी सचता की रहत, जो जिसकी करनी सच्चा है, जिसकी रहत सच्चा है, जिसका हृदय सच्चा है और मुंह से सत्य बोलता है। साची दृष्ट साचा आकार, सच वर्तय साचा पासार। कहते हैं जिसकी दृष्टि सच्ची है, क्योंकि ये आंख से काम का प्रवेश होता है, वासना का प्रवेश ये आंख से और कान से होता है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि इस आंख से क्या देखते हैं। दूसरे के अंदर बहुत धन है, इस आंख से देख करके मन में विकार पैदा हो सकता है कि ये धन मेरा हो जाए, लालच आ सकता है। इसी तरह से और जो विषय हैं ये आंखों से देख करके मन गंदा हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति जिसकी दृष्टि सच्ची है, जिसकी सोच देखने का, जो देखता है सत्य का, सत्य का अवलोकन करता है और साचा आकार, ये जगत का व्यवहार जो भी है आकार, ये सारी सृष्टि आकार के अंदर है। साची दृष्ट साचा आकार, सच वर्तय साचा पासार। ये जो वाहेगुरु आप सच हैं, क्योंकि आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, एक ओंकार सतनाम, वो एक ओंकार जो निरंकार है वो सत्य है, सत्यम परम धीम है, उस सच से ये सारा आकार बना है। साची दृष्ट साचा आकार, परमात्मा सच्चा है और भक्त का हृदय भी सच्चा होता है। ये आकार जो संसार है ये भी जो है प्रभु के शक्ति से ही बना है। सच वर्तय साचा पासार, और प्रभु का ये जो पसारा है वो ही सच्चा है, सब कुछ सच्चा है। हम जो भी अज्ञानता में करते हैं वो झूठ होता है, लेकिन जब होश पूर्वक गुरु की समझ पूर्वक जो भी कुछ करते हैं वो फिर सच्चा होता है। अपनी आंखों से संसार देखते हैं और जब हमें गुरु की आंख मिल जाती है तो इससे परमात्मा देखते हैं, उसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं। गुरु की आंख को दिव्य दृष्टि कहते हैं। अपने से देखने पर विकार, तरह तरह के नानत्व देखते हैं, लेकिन जब गुरु के द्वारा समझ मिल जाता है, होश मिल जाता है, एक दिव्य दृष्टि मिल जाती है, तब ब्रह्म दिशे ब्रह्म सुनिए, एक एक वखाणिए, आत्म पसारा करण हारा प्रभु बिना नहीं जाने। जिधर भी देखते हैं वाहेगुरु को ही देखते हैं। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सोजन सच समाता। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, जो व्यक्ति पार ब्रह्म को सत्य करके जाना है कि पार ब्रह्म परमात्मा ही सत्य है और कोई दूसरा सत्य नहीं है, वेद में एक मंत्र आता है, एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, कि एक वाहेगुरु परमात्मा ही सत्य है, उसके अलावे सब झूठ है। उसी बात को गुरु महाराज यहां कह रहे हैं, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, जिसने वाहेगुरु को पार ब्रह्म को सच कर जाना है और उसके अलावे सबको झूठ जाना है, नानक सोजन सच समाता, वह जन सच में समा जाता है। जैसे एक बूंद सागर में समा जाता है, ऐसे ही जीव परमात्मा में समा जाता है। आगे यहां पर ब्रह्मविद ब्रह्मै भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तद अपश्यत तद भवत, उसको देखते ही व्यक्ति वही हो जाता है। यह किस प्रकार से, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि कभी कभी हम लोग शाम के वक्त घूमने के लिए जाते हैं तो टेढ़ी मेढ़ी रस्सी गिरी होती है शाम के वक्त, लेकिन दूर से हमें सांप दिखता है और सांप देख करके हम लोग भागने लगते हैं। उधर से एक दो लोग आते हैं, वो कहते हैं तुम क्यों भाग रहे हो, कहते हैं तुम भी भाग जाओ, देखो सांप वहां पर। एक आदमी, उसको पता है कि ये सांप नहीं रस्सी है, वो कहता है डरने की कोई बात नहीं, ये रस्सी पड़ा है। कहते है, नहीं नहीं हमको दिख रहा है सांप, तुम कहते रस्सी। वो व्यक्ति जिसको पता था कि ये रस्सी है, उसने अपने पॉकेट से टॉर्च निकालता है और जो सांप दिख रहा है उसके ऊपर टॉर्च मारता है। टॉर्च मारने से जो रस्सी था वो रस्सी रूप में दिख गया साफ साफ। जिन लोगों को सांप का भ्रम था वो भ्रम टूट गया। अब वही व्यक्ति जो भय खा रहा था सांप से, वो कहता है कि मैं कैसा मूर्ख था जो रस्सी को सांप कहता। इसी तरह से हम ये सारे जगत को संसार कहते हैं। एक ब्रह्मज्ञानी संत कहते हैं कि भाई ये संसार नहीं है, ये परमात्मा है, सब गोविंद है, सब गोविंद है। हम कहते नहीं नहीं जी, ये कैसे हो सकता है, लेकिन वह हमारे जीवन के अंधकार को दूर करते हैं ज्ञान दे करके। फिर हम ही कहते हैं कि मैं कैसा मूर्ख था कि एक परमात्मा को मैं संसार बोलता था। इसलिए साध संगत जी, जिसने भी परमात्मा को पाया है, किसी संत महापुरुष ब्रह्मज्ञानी के शरण में जाके ही पाया है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सोजन सच समाता। पार ब्रह्म की तेज का कह कैसे उन्मान, कहवे को शोभा नहीं देखा ही परमान। जब तक प्रभु परमात्मा का दीदार ना हो जाए, तब तक मनुष्य को भ्रम बना रहता है कि मैं जन्मने व मरने वाला हूँ। सच्चाई ये है कि ये तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीनों शरीर जन्मते हैं मरते हैं। इन तीनों शरीरों के अंदर जो साक्षी चेतन आत्मा, जो दृष्टा है, उसकी कभी मौत नहीं होती। जो ज्ञान स्वरूप तुम्हारे अंदर है उसकी कभी मौत नहीं होती। जागृत स्वप्न और गूढ़ी नींद ये बदलते रहते हैं, लेकिन जागृत स्वप्न और साउंड स्लीप, सुसुप्ति, गूढ़ी नींद के अंदर, तीनों के अंदर जो चेतन आत्मा है वो कभी नहीं बदलता है। जो व्यक्ति ऐसा जानता है कि तीनों अवस्थाओं में धागे की तरह जो पिरोया हुआ है वो चेतन है, और चेतन को ही आत्मा कहते हैं, आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं, जिसको गुरु के द्वारा ऐसा समझ हो गया है, वो तुरिया अवस्था को प्राप्त। तीन अवस्थाएं आती जाती रहती हैं, लेकिन तुरिया अवस्था आता जाता नहीं, वो कांस्टेंट एक जैसा रहता है। उस तुरिया अवस्था का अनुभव व्यक्ति समाधि में कर सकता है। जब एकांत में ध्यान में बैठे तो ये अनुभव करे कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर को जानने वाला हूँ। मैं इंद्रियां नहीं हूँ, मैं इंद्रियों को जानने वाला हूँ। मैं मन नहीं हूँ, मैं मन को जानने वाला हूँ। जो जानने वाला है ज्ञान स्वरूप, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है ज्ञान, आत्मा का स्वभाव है प्रकाश, आत्मा का स्वभाव है आनंद और सत चित आनंद, जिसको साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं सदा सच्चिदानंद सर्वंग प्रणासी। ऐसा जो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है वह तुम्हारे हृदय में है, क्योंकि काहे रे बन खोजन जाई सर्वनिवासी सदा अलेपा तुम्हे संग समाई। वह तुम्हारे अंदर सदैव से समाया हुआ है, उसी को खोजना है। जीवन का लक्ष्य है सत्य को जान लेना, और वह सत्य तुम्हारे अंदर है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति जो तीनों अवस्थाओं में एक जैसा रहता है वही सत्य है, वही सुप्रीम ट्रूथ है, वही एब्सोल्यूट ट्रूथ है। दो चीजें हैं, एक एब्सोल्यूट ट्रूथ और दूसरा है अपीयरेंस। अपीयरेंस का भाव है आभास। ये जो सारा जगत है एक आभास है, और एब्सोल्यूट ट्रूथ सत्य है। जैसे शीशा में आप अपने चेहरे को देखते हैं, तो जैसे आपका चेहरा है वैसा ही शीशा में दिखता है, लेकिन सत्य पीछे है और उसकी परछाई जो है वो शीशे में है। इसी प्रकार से जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है वो तुम्हारे अंदर है, और ये जो सारा कुछ है ये आभास है, अपीयरेंस है। अपीयरेंस से हटकर एब्सोल्यूट ट्रूथ में आ जाएं, और यही जीवन का लक्ष्य है कि तुम अपने में केंद्रित हो जाओ। क्योंकि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे पीपा प्रणवय परम तत्व है सतगुर होय लखावे। साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज मोदी खाना का दुकान कर रहे हैं। दो बार पहले जो नवाब है दो बार परीक्षा ले चुका है साहेब श्री गुरु नानक देव जी का, कि भाई तुमने दुकान लुटा दिया है हिसाब कर लेते हैं। हिसाब करने पर, दो बार हिसाब करने पर गुरु नानक देव जी का ही पैसा निकला, और लज्जित होकर के मुंशी भी लज्जित हुआ, नवाब भी लज्जित हुआ। तीसरी बार साहेब गुरु नानक देव जी महाराज वेई नदी के किनारे बैठे हैं और सुमरन कर रहे हैं, निरंकार का ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करते करते अचानक वो नदी में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते 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 वो उसी के अंदर ही चले गए वेई नदी में। वहाँ पर सेवादार था, वो उनकी कपड़ा को लेकर के वहाँ बैठा था। वो देखता है कि आधा घंटा हो गया, घंटा हो गया, वो नदी में प्रवेश किए बाहर नहीं आए। वो इधर उधर दौड़ता है, काफी चिंतित है वो। एक घंटा हो गया, दो घंटा हो गया, चार घंटा हो गया, चारों तरफ झांकता है, बहुत परेशान होता है। वो दौड़ा दौड़ा गया और जा करके बेबे नानकी को बोला, जय राम भैया जय राम को बोला, कि वो तो नदी में डूब गए हैं, एक उनके कपड़े हैं, क्या किया जाए। लोगों में लोग कह रहे हैं कि लोग हमारे गुरु को भी नहीं छोड़े हैं। कुछ लोगों ने कहा कि पहले इसने दुकान लुटा दिया, अब सोचा कि जो है हिसाब निकलेगा तो घाटा ही घाटा है, क्योंकि दुकान सारा खाली कर दिया है, और जब नवाब हिसाब मांगेगा तो पैसा कहां से देगा। तो लगता है गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी तो हम बोले वो तो पता नहीं क्या क्या बोलता होगा। उन लोग कहते हैं वो डर से जो है नदी में डूब गया है। जैसे लोग आत्महत्या कर लेते हैं ना, जब लोन बहुत ज्यादा हो जाए बैंक का और देखे कि अब चुका नहीं सकते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं बहुत। कुछ लोगों ने ऐसा ही लिखा हुआ है, जो भाई बाले की साखी है ना उसमें इसी तरह लिखा है। लोग जो है तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि दुकान लुटा करके और वो वही नदी में प्रवेश कर गए हैं, अब क्या होगा। और भाई जयराम भी लोगों के कहने पर चिंतित हो गए, लेकिन बेबे नानकी वो चिंतित नहीं है। वो अपने पति देव को समझाती है आप चिंता ना करें, वो तो निरंकार है। उनका हरेक कर्तव्य एक कौतुक है, एक लीला है। उनके कर्तव्य को आप नहीं समझ सकते, वो तो इस संसार में लीला करने के लिए हैं, साक्षात नारायण है। लेकिन भैया जयराम बहुत चिंतित है, बहुत चिंतित है। बहुत से लोगों को गोताखोर को बुलाया गया, सारा जो है सो नदी छान लिया, लेकिन गुरु नानक देव जी नहीं मिले। वहां पर बेबे नानकी निरंकार के आगे प्रार्थना करती है और ध्यान में बैठ जाती है कि जब तक नानक नहीं आएंगे, मेरा वीर नहीं आएगा, तब तक मैं ध्यान करूंगा। ऐसा कहते हैं, इतिहास में लिखा है कि तीसरे दिन साहेब गुरु नानक देव जी महाराज प्रकट हुए वही नदी से। वहां पर जो सेवादार था वो दौड़ा दौड़ा जो है सो आ करके भैया जयराम को बोले, और माता सुलक्षणी ये सारे बहुत चिंतित हैं। जब पता चला कि गुरु नानक देव जी प्रकट हो गए हैं, खुशी, जैसे कहते हैं ना कि सारी कलियां खिल जाती हैं, सारे के अंदर जो रोना धोना था सारे आंसू पोंछ करके खुशियां चारों तरफ हो गया। बेबे नानकी भी जो है बहुत प्रसन्न हुई, और वहां पर जब साहेब गुरु नानक देव जी महाराज बाहर आए तो एक कफनी पहन ली, जैसे फकीर लोग पहनते हैं ना, कफनी पहन ली। लोगों ने कहने लगा कि दुकान लुटा करके अब कफनी पहन लिया है, ऐसे लोग कहने लग पड़े। साहेब गुरु नानक देव जी महाराज सीधे दुकान में जाते हैं, दुकान में देखते हैं ताला लगा हुआ है। लोगों को कहते हैं कि भाई जितना तुम लोगों ने सौदा लेना है ले लो, एक और दरवाजा था उसको खोल दिए। कहते हैं ले लो, ये सब परमात्मा का दुकान है, जिसको जो जरूरत है ले लो। जो नवाब था वो तो पहले ही सोच रहा था कि हिसाब लें, और जो थोड़ा बहुत सौदा था वो भी लुटाए जा रहे हैं। जाके भाई जयराम को कहता है नवाब के, जल्दी मुझको हिसाब दो, मैं तो हिसाब पहले ही लेने वाला था और जो सौदा वो भी लुटा दिया इसने, मैं तो हिसाब तुमसे लूंगा। जो साहेब गुरु नानक देव जी महाराज जो सृष्टि के रचयिता हैं, साक्षात नारायण हैं, कहते हैं ठीक है भाई हिसाब ले लो। हिसाब लिया, कहते हैं 700 कुछ रुपया जो है और गुरु नानक देव जी पर निकला। वहां पर साहेब गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, वो नवाब ने लज्जित होकर जब पैसा देने लगा और फिर थोड़ा नरम हो गया, कहते हैं कोई बात नहीं और मेरे से पूंजी ले लो जितना मर्जी, और दुकान बढ़ा लो। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं अब ये दुकान नहीं करना है, अब जो है जो भी काम करेंगे वो निरंकार के प्रचार के लिए करेंगे। साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज सीधे श्मशान भूमि में चले जाते हैं। वहां जाकर के उदास होकर के परमात्मा के साथ वृत्ति को जोड़ते हैं। वहां से उठ करके फिर प्रचार में लग जाते हैं, और उनकी जो पहली वाणी है वेई नदी के बाद वो है एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच बात सच है भी सच नानक होसी भी सच। जो उन्होंने वेई नदी तीन दिन जब वेई नदी से बाहर आए तो उनकी पहली वाणी जपजी साहेब है। इसीलिए जपजी साहेब का महात्म बहुत ज्यादा है। साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी का यदि सार कहा जाए तो वो जपजी साहेब है, और जपजी साहेब का सार है पहली पौड़ी। इसलिए साध संगत जी एक ओंकार सतनाम, जो एक ओंकार है प्रभु परमात्मा वही सच है और कोई सच नहीं है। इसलिए साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उसी चीज को यहाँ उपदेश कर रहे हैं, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, जिसने प्रभु परमात्मा को सच कर जाना और जगत को झूठ करके जाना वही परमात्मा में समा गया है। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सोजन सच समाता। साहेब गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं वह व्यक्ति सच परमात्मा में समा जाता है। जिस प्रकार से अनेक अनेक नदियां समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाती हैं, इसी प्रकार से जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है वो परमात्मा को पाकर परमात्मा हो जाता है। श्लोक, रूप न रेख न रंग किछ, त्रेह गुणते प्रभ भिन्न, तिसह बुझाए नानका, जिस होवे सुप्रसन्न। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज परमात्मा के स्वरूप को बता रहे हैं कि परमात्मा का दो स्वरूप है, एक निर्गुण निराकार स्वरूप और दूसरा सगुण साकार स्वरूप। जिस प्रकार से जितनी भी लकड़ियां हैं उसके अंदर अग्नि है लेकिन वो अग्नि हमें दिखता नहीं, दो लकड़ियों को आप घर्षण करो रगड़ करो तो अग्नि प्रकट हो जाता है, जो अग्नि प्रकट हो जाता है वो हमें आंखों से दिखता है, उसका कोई ना कोई आकार होता है, उसका कोई ना कोई रूप होता है, लेकिन जो अग्नि लकड़ी के अंदर है उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। इसी तरह से जब कोई भक्त प्रार्थना करता है ईश्वर के आगे कि हे वाहेगुरु, हे नाथ, आप इस रूप में प्रकट हों, तो भक्तों की प्रार्थना को सुन करके जब प्रभु सगुण रूप में आते हैं तो उसको सगुण परमात्मा कहते हैं। सगुण परमात्मा आंखों से भी दिखता है, सगुण परमात्मा को आप हाथ से भी छू सकते हो, सगुण परमात्मा को आप गले भी लगा सकते हैं, लेकिन निर्गुण निराकार परमात्मा जो है वो आंखों का विषय नहीं है, पांच ज्ञानेंद्रियों का विषय नहीं है, पांच कर्म इंद्रियों का विषय नहीं है, यहाँ तक कि मन से भी उसको नहीं जान सकते। मन समेत जह जाए न वाणी, जहाँ पर मन नहीं जाता वाणी नहीं जाती। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसः, उस परमात्मा तक जो निर्गुण निराकार है वहाँ तक मन नहीं जाता, मन पीछे पीछे रह जाता है क्योंकि वो बेअंत है, निर्गुण है, निराकार है। आगे साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज यहाँ पर निर्गुण निराकार परमात्मा के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि वो वाहेगुरु कैसा है, निरंकार, रूप न रेख न रंग किछ, परमात्मा का कोई रूप नहीं है। जितने भी रूप जो है हम अपनी कल्पना के अनुसार बनाते हैं कि परमात्मा ऐसा है ऐसा है, जब परमात्मा रूप नहीं है तो हम आंखों से देखने की जो चाह है परमात्मा को वो छोड़ दें। हमारी यही चाह है ना कि भजन करेंगे ध्यान करेंगे और बीच बीच में आंख खोल के देखेंगे कि आया कि नहीं आया। निर्गुण निराकार परमात्मा आंखों का विषय नहीं है, आंखों से दिख नहीं सकता। गुरु महाराज साहब कह रहे हैं रूप न रेख न रंग किछ, वो काला गोरा नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई चिन्ह नहीं है। चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहंजह, रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत कह, अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहे जय। वह तो अनुभव की चीज है, उसको जो है गुरु के उपदेश के द्वारा ध्यान के द्वारा अंदर जो है आनंद रूप से अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि गुरु की प्राप्ति के बाद आनंद की प्राप्ति होती है और आनंद प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव है, परमात्मा स्वभाव है। गुरु महाराज कह रहे हैं रूप न रेख न रंग किछ, त्रह गुणते प्रभ भिन्न, तीन गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये सारी सृष्टि जो है तीन गुणों से बना है और तीन गुणों को माया कहते हैं, रज गुण तम गुण सतगुण यह तेरी माया, ये सारा संसार माया रूप है और इस सृष्टि की जो डोर जिसके हाथ में है वो निर्गुण निराकार परमात्मा है। रूप न रेख न रंग किछ, त्रह गुणते प्रभ भिन्न, परमात्मा इन तीनों गुणों से भिन्न है, सेपरेट है, अलग है। तिसह बुझाए नानका, जिस होवे सुप्रसन्न, जिसके ऊपर गुरु जिसके ऊपर वाहेगुरु परमात्मा प्रसन्न होता है उसको वो बुझा देता है, जना देता है, अनुभव करा देता है और वह व्यक्ति धन्य है जो मृत्यु से पहले पहले निर्गुण निराकार परमात्मा वाहेगुरु को अनुभव कर लेता है, क्योंकि उसके अनुभव करने के बाद और कुछ अनुभव करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको पाने के बाद और कुछ पाने की तमन्ना समाप्त हो जाता है, उसको पाने के बाद व्यक्ति सदा के लिए तृप्त हो जाता है, और जिससे उसको पाने के बाद लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभु आपे मेले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।